मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 23 फरवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं ऋतु राज सिंह, आप लातेहरा झारखंड से हैं, और मोरे अनिकेत अरुण राव, आप माजलगांव महाराष्ट्र से हैं। तो ऋतुराज और मोरे अनिकेत आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे कुछ मेल मिले हैं और उसमें खासकर दो मेल का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। चंदन सिंह कंवर और प्रिंस कुमार, इन दोनों ने मेल भेजे हैं और मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने लिखा है कि जो यूपीएससी हाउस में कह लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के उस खूबसूरत गोल सी बिल्डिंग में आईएएस के लिए जो इंटरव्यू शुरू हो गए हैं उन दोनों स्टूडेंट वहां हो करके आए और उन्होंने जो इंटरव्यू दे करके निकले हुए स्टूडेंट थे उनसे मुलाकात की और उनसे कुछ बातचीत भी की। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आए, या ईश्वर से कह लीजिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आए जब वे भी उसी तरह से यूपीएससी की उस बिल्डिंग से इंटरव्यू देकर बाहर निकलें और उनसे मिलने के लिए कुछ स्टूडेंट उनकी प्रतीक्षा करते रहें। और मेरी यह शुभकामनाएं मित्रों आप सभी के लिए है जो सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप सबको लगभग कम से कम एक दिन उसके लिए निकालना ही चाहिए। यह देखिए एक ऐसा अवसर है जिसके लिए फिर आपको साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, साल भर बाद ही आपको यह मौका मिलेगा। और खासकर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली के आसपास का मतलब है कि दूसरे प्रदेशों में भी जो उस एरिया में रह रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि भले ही उन्हें थोड़ा सा सफर ही क्यों न करना पड़े, यानी कि यात्रा क्यों न करना पड़े, लेकिन वो इसके लिए वक्त निकालें और इसे वेस्टेज ऑफ टाइम न माने, इसे समय की बर्बादी न माने। समय का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि समय का यह बहुत अच्छा उपयोग होगा। आप लोगों को कम से कम एक बार तो वहां जाना ही चाहिए। मित्रों मैं एक अपील आप सबसे और भी करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट वहां जाते हैं मैं चाहूंगा कि जब उनकी स्टूडेंट से बातचीत होती है तो उस बातचीत का ब्यौरा मेरे पास भी भेजने की कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त इसके लिए भी निकालें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अपनी बातचीत का ब्यौरा मुझे भेजेंगे तो मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में उनकी चर्चा करूंगा ताकि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उन्हें ये पता लग सके कि इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उन्हें ये बात पता लग जाती है तो डेफिनेटली यह जानकारी उनके अगले साल की तैयारी के लिए या अभी से ही जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मददगार होगी। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो स्टेजेस में नहीं होती है कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं और फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी बड़े इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है, समन्वित तरीके से होती है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो जून में एग्जाम होना है, तो मान करके चलिए कि आपको इंटरव्यू के लिए अभी से सतर्क रहकर तैयारी करना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि मेंस से फ्री हो जाएं तो फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। तो मित्रों मैं चाहूंगा कि आप सब उनके ब्यौरा लिख करके भेजें ताकि मैं अपने प्रिय श्रोताओं को बता सकूं कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे प्रिंस ने कुछ प्रश्न भेजे हैं, दो प्रश्न खासकर उन्होंने हाईलाइट किए हैं व्यक्तिगत बायोडाटा के अतिरिक्त, और वो ये कि चीन और भारत के संबंधों पर प्रश्न पूछे गए और साथ ही मालदीव संकट, मालदीव में जो अभी संकट आया हुआ है इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे गए। और मित्रों अगर आप सही मायने में एक अनुशासित श्रोता हैं मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर के तो आपको मालूम होगा कि चीन पर भी बातें की गई हैं और मालदीव पर भी बातें की गई हैं, और मैंने दोनों इन टॉपिक्स को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है, और इस पर हम लोगों ने आपको करंट कंटेंट में भी सामग्री उपलब्ध कराई है, कम से कम चाइना के ऊपर तो उपलब्ध कराई है, मालदीव के ऊपर आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और मैंने अपने डेली ऑडियो गाइडेंस में भी उसकी चर्चा की थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में जो एक बड़ा भय सा समाया रहता है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। प्री में चलिए कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से आ जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ आने दीजिए, लेकिन वहां भी तो कट ऑफ मार्क्स हार्डली 60% ही है, वहां भी तो 40% की गुंजाइश है। अगर आप 40% प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक इंटरव्यू का सवाल है या मेंस एग्जामिनेशन का सवाल है, वहां अक्सर नोन टॉपिक पर ही पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, यदि आप थोड़े से भी सतर्क हैं तो। बाकी तो सारा का सारा कमाल इस बात का होता है कि आप उसे लिखकर कैसे आते हैं, उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने इंटरव्यू के बारे में आप सबसे की है। एक सूचना मैं अलग से देना चाहूंगा फ्रेंड्स की, आप लोगों की अब जो प्री एग्जामिनेशन की डेट है लगातार धीरे 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 करीब आती जा रही है, और हम लोगों ने अब प्री एग्जामिनेशन के पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको लेकर के YouTube पर कुछ वीडियो अवेलेबल कराने शुरू कर दिए हैं। उसका पार्ट वन कुछ दिनों पहले दिया गया था पिछले सप्ताह, और उसका पार्ट टू कल रिलीज किया गया है। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसमें मैंने ट्रिक्स की बातें की हैं। देखिए, जहां तक ट्रिक्स का सवाल है, आप 100% तो कुछ नहीं कह सकते कि साहब ट्रिक्स से आप बिल्कुल सही सही ही कर लेंगे, लेकिन सही के करीब पहुंच जाएंगे, और अगर आप 75% भी सही के करीब पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये क्रांतिकारी बात होगी सफलता के लिए, क्योंकि सफलता के लिए चूक हो सकता है कि आपका 0.1% के लिए हो जाए, तो ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, बहुत सक्षम बनाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप YouTube पर ये प्रोग्राम देखें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, अब वे सूचनाएं जो हर फ्राइडे को मैं आपको जनरली देता हूं वो ये है दोस्तों कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ कल आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में, वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। वीकली क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप अभी से उसका अभ्यास करना शुरू कर दें, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों, मुख्य विषय के रूप में आज हम लोग थोड़ी सी चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, जितना की बात करने की इजाजत हमें वक्त देगा। आइए तब तक दूसरी कुछ न्यूज और घटनाओं के बारे में हम बातें कर लेते हैं। दोस्तों, जहां तक न्यूज का सवाल है, सच पूछे तो कोई ऐसी न्यूज नहीं थी जिस पर बात की जा सके। हाँ, अखबारों में जरूर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो हर साल आपको करप्शन पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, भ्रष्टाचार पर, राइट? अभी दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017 के लिए एक इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स इस बात का, करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स यानी कि दुनिया भर में कौन से देश करप्शन के मामले में किस लेवल पर हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि जिसे 100 नंबर मिले हैं, मतलब वो वहां सबसे कम करप्शन है, या यूं कह लीजिए कि करप्शन है ही नहीं जिसको 100 में 100 मिले, और इसके बाद जिसके नंबर जितने कम होते चले जाएंगे वहां उतनी ज्यादा करप्शन बढ़ता चला जाएगा। आपको इस तरीके से समझना है। तो मित्रों, भारत 183 देशों के उसने आंकड़े जारी किए हैं, और उन 183 देशों में भारत 81 यानी कि 81वें स्थान पर पहुंच गया है, और आश्चर्य की बात यह है कि पहले की तुलना में हम 2 पायदान दो स्तर और ज्यादा नीचे गिर गए, यानी कि थोड़े से हम ज्यादा करप्ट हो गए हैं, थोड़े से ज्यादा करप्ट हो गए हैं। और जो हमें नंबर मिले हैं मित्रों, इसमें टोटल मिलाकर के वो 40 नंबर हमें मिले हैं, 100 में 40। अब समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करप्शन का लेवल हमारे यहां क्या है। और आप देखिए कि ये करप्शन उस स्थिति में बढ़ता जा रहा है जबकि सेंटर में लगातार करप्शन को रोकने की कोशिश हो रही है। हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है वह भी इसी नारे के साथ आई थी कि वो काला धन तो खत्म करेगी ही करेगी, साथ ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। इसके बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। और आपके सामने अभी दो तो बड़े भारी घोटाले है ही हैं, जिस एक हमारे नीरव मोदी जी से संबंधित है और दूसरा जो रोटोमिक पैन है, लिखते लिखते लव हो जाए, उनके मालिक मिस्टर कोठारी हैं, कि कितना बड़ा बैंक घोटाला इन दोनों के नाम पर दर्ज हो चुका है। तो करप्शन के आप देखिए कि हम किस स्थिति में है। एक मुझे बड़ी आश्चर्य सी बात लगती है और बड़ी सुखद बात लगती है, आश्चर्य शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो ये है दोस्तों की जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसकी बड़ी खासियत है कि वो लगातार अच्छाइयों के मामले में टॉप पर रहते हैं। सफाई के मामले में वो टॉप पर है, कहां अपराध सबसे कम है वो टॉप पर है, कहां का जीवन सबसे सुखमय है वो टॉप पर है, हैप्पी इंडेक्स जिसको आप कह लीजिए, कहां प्रदूषण कम है वो टॉप पर है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहने का मतलब है जिसमें दोस्तों डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, कुछ मामले तक स्विट्जरलैंड भी है, इसमें आप एक नाम और जोड़ लीजिए न्यूजीलैंड, और ये जो पांच देश हैं ये सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, जिसमें न्यूजीलैंड टॉप पर है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये सब के सब यूरोपीय देश है। ये न्यूजीलैंड को आप थोड़ा सा उधर में ले सकते हैं। तो मित्रों आप देखिए कि फिर यहां की व्यवस्था आखिर में ऐसी क्या है कि ये सबसे कम भ्रष्ट है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे अध्ययन का विषय है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। खैर मित्रों, जो दूसरी खबर है मुझे लगता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अभी श्रीगंगानगर के कुछ स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च की है और उस रिसर्च में ये पाया है कि जो हाईवे है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए जो हाईवे जाता है, वहां के किनारे, वहां के रोड हाईवे के किनारे 500 मीटर अंदर तक जो पेड़ खड़े हैं उनको लिखा है कि अस्थमा की बीमारी हो गई है। अस्थमा की बीमारी में आप देखते हैं ना कि सांस लेने में दिक्कत होती है, वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक है और पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि उनके पत्तियों के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमने लगी है, और मिट्टी जमने के कारण उन पौधों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिनोल और स्टार्च की कमी हो रही है, और इस कमी के कारण उनके जो रंध्र होते हैं पत्तों में, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बंद हो जा रहे हैं, और छिद्र के बंद हो जाने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मतलब अब प्रदूषण से प्रकृति भी परेशान होने लगी है। तो दोस्तों इस खबर के बाद अब वक्त बहुत कम बचा है, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर जो चीन की साम्राज्यवादी नीति को लेकर है। फ्रेंड्स, अभी आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से चीन अपने कुछ युद्धपोत हिंद महासागर में भेज रहा है, और लगभग चीन ने पूर्वी हिंद महासागर में लगभग 11 युद्ध पोतों की तैनाती कर दी है, और उसके जवाब में फिर भारत ने भी अपने 8 युद्धक जहाज हिंद महासागर में भेजे हैं। इसको लेकर के आप ये मत सोचिएगा कि कोई युद्ध की स्थिति है, कोई बहुत तनाव की स्थिति है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह की घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। दोस्तों, भारत और चीन के संबंधों में फिलहाल जो तनाव चल रहे हैं उनके कारण आप जानते हैं, और डोकलाम विवाद के बाद ये लगातार बढ़ता चला गया है। चीन की जो साम्राज्यवाद नीति है, साम्राज्यवादी, उसका जो सबसे अच्छा जो प्रमाण है जिसको लेकर के लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, वह है वन बेल्ट वन रोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ओबोर, और याद रखिए कि इसका नाम अब बदल करके बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर दिया गया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है और चीन के द्वारा शुरू किया गया है। चीन इसके माध्यम से बहुत बड़े एरिया को एक दूसरे से जोड़ना चाह रहा है, और एरिया क्या है, मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, आप कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया, आपका ईस्ट एशिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के आसपास जितने भी देश हैं उन सबको जोड़ना चाह रहा है। अगर आप उसको और आगे बढ़ा देंगे तो फिर वो यूरोप और अफ्रीका भी इसमें आकर के मिल जाते हैं, और इस प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि एक हाईवे बनाना चाह रहा है। इसमें फिर जगह जगह पर होंगे, कहीं पर बंदरगाह बनेंगे, कहीं पर रेलवे स्टेशन बनेंगे, कहीं पर एयरपोर्ट बनेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो ये जो एरिया है वह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ऊपरी तौर पर आप देखिए तो ये सब चीजें बड़ी सही लगती हैं, लेकिन मित्रों इसके पीछे जो चीन पूरी दुनिया पर अपना जो दबदबा कायम करना चाह रहा है, इसके प्रति लोग बहुत सशंकित हैं और बहुत चिंतित भी हैं। और उसी के जवाब के तौर पर आप देखिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने बात भी की थी कि चार देश आपस में मिलकर के इसका सामना करने के बारे में रणनीति बनाने के पर सोच रहे हैं। स्क्वाड जिसे हम कहते हैं, चतुष्कोणीय संगठन आप कह लीजिए, जिसमें नो डाउट भारत है, अमेरिका है, आपके जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये चार देश मिलकर के इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई विकल्प आ जाएगा। और पूरी दुनिया इन विकल्पों की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि ये मानकर चलिए कि चीन के प्रति लोगों के मन में एक शंका का भाव रहता ही है, क्योंकि चीन का जो अब तक का इतिहास रहा है, अभी भी जो कुछ भी वो अपने उसके साथ जिन देशों के अच्छे संबंध हैं उनके साथ जो कर रहा है, उसे देखते हुए बिल्कुल ये लोगों को लगता है कि सामने तो ऐसा लगता है कि वो दूसरे देश की मदद कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट सही मायने में वह मदद के बहाने दूसरे देशों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। जब हम अधिकार की बात करते हैं मित्र, तो देखिए पॉलिटिकल अधिकार तो कोई नहीं कर सकता कि आप वहां अपना राज्य कायम कर देंगे, लेकिन उस पर आप अपना दबदबा कायम करके आप अपने आर्थिक और सैन्य हितों की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों चीन के बारे में बस इतना थोड़ा सा ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, काफी क्लिपिंग्स हैं मित्रों, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं, विपुल कुमार पूर्णिया बिहार से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, ज्योति गुप्ता रुद्रपुर उत्तराखंड से, सचिन कुमार त्रिपाठी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, निरंजन मिश्रा, प्रिया गुप्ता, अमन गुप्ता कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और अनीता यादव सिरसा उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों अब दो दिनों की छुट्टियां हैं, अपनी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, और सच पूछिए तो आप सबकी ओर से भी मैं इन दो दिनों के बहुत ही खुशनुमा व्यतीत होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ ही दोस्तों आप सबसे इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।